कविन भाई
ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो अग्नि मंगलं कुंकुंधार्यो जैन धर्मोष्टम मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानं जैनं जेतु शाश्वतम्। नमः समय शाराय श्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते एवो मे शाश्वतोपाग्नान दर्शन लखनो शेषा मे बाहिरा भावा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव तिथि बाह्य छे। तुस्ताप निजने मोक्ष पंथे या अनुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिवाय। समय सार परमागम की 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में जो 5 बोल की चर्चा अपनी चल रही है 3 दिन से, उसमें अपना 3रा बोल पर चर्चा सवेरे शुरू हुई थी, जो समुद्र का दृष्टांत से नियत वाला बोल है। एक पहला बोल है अबद्ध स्पष्ट, दूसरा अनन्य, तीसरा नियत, चौथा अविशेष, पांचवा असंयुक्त। उसके सामने जो 5 बोल आए हैं बद स्पष्ट आदि भाव के 5 बोल जो है कि कर्म से बंधा हुआ है, अन्य अन्य गति में है, यानी कि वृत्ति हानि रूप है, विशेष रूप है, संयुक्त है मोहराग से, वो बद स्पष्ट आदि भाव के 5 बोल हैं। उसमें अपन ने जो पहले बोल को माने द्रव्य कहा जाता है, दूसरा बोल को क्षेत्र कहा जाता है, तीसरा बोल काल में लागू पड़ता है नियत वाला, चौथा बोल जो है अविशेष वाला वो भाव में लागू पड़ता है, तो वो अपेक्षा से अपनी चर्चा चल रही थी। दूसरा बोल अपन ने एकदम देख लिया था, वो कड़ा और माटी वाला, और उसमें नर नारक आदि पर्याय हो ऐसा जो उसका आत्मा का वो पर्याय रूप अनुभव जो चल रहा है वो बद स्पष्ट आदि भाव बोला जाता है, माने कि अन्य अन्य भाव, वो अन्यपना उस अपेक्षा से देखने से उतार थे, मगर अपना अस्खलित एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वो अन्यपना अभूतार थे। वो दूसरे बोल की चर्चा चल गई। तीसरा बोल अपन ने शुरू किया था, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतपना भूतार्थ है सत्यार्थ है। देखो ये बोल में जो अपनी सवेरे बात चली थी ना कि भाई जो समुद्र की लहरें चल रही है वो समुद्र का भाग नहीं है, ये बात चल रही थी, तो 2-3 लोगों ने मेरे को बोला कि भाई ये समुद्र की लहर है वो तो समुद्र की ही होती है, मैं आप ऐसे कैसे बोलते हो कि वो उसका भाग है ही नहीं। देखो भैया ये शुरू हुई गाथा तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये गाथा में द्रव्य पर्याय की भिन्नता की चर्चा है, पहली बात एक। दूसरी बात ये है कि जो भी पर्याय प्रकट हो रही है वो पर्याय जब आत्म सन्मुख होके आत्मा में अहम करके परिणमती है तब उसको आत्मा बोला जाता है। ये भी बात ये गाथा में है। ये दूसरी बात, जब यहाँ एक ही बोल में दो बात सब बोल में चल रही है, इसमें ये द्रव्य की बात चल रही है अभी कि अभी पर्याय की बात चल रही है, ये बहुत ध्यान रखने योग्य है। जब द्रव्य की बात चलती है तो वो समुद्र का लहर है, वो उसका भाग है ही नहीं। अगर आप वो लहर को समुद्र का भाग देखोगे तो दृष्टि का विषय में पर्याय शामिल हो जाएगी, दृष्टि का विषय परिणामी नहीं होता, दृष्टि का विषय अपरिणामी होता है। उसमें कोई परिणमन तो होता नहीं मगर परिणमन करने वाली पर्याय भी उसमें नहीं होती, दृष्टि का विषय इसे बोला जाता है। इसलिए यहाँ जो ये जब समुद्र की बात चले तब दृष्टि का विषय की चर्चा है, अनिवृत्ति बात चले तब पर्याय की चर्चा है, और वो पर्याय आत्मा के समीप होके जब देखे तो वो पर्याय द्रव्य बन के देखती है कि मैं आत्मा हूं, ऐसी बात है। ये तीन बात एक ही बोल में चल रही है, इस अपेक्षा से अपन उसको विचार में लेंगे तो एकदम सरल है। देखो सभी जगह ये बात लागू करना, एक अपरिणामी तत्व है, एक पर्याय का परिणमन चलता है। अभी जब तक ये अपरिणामी तत्व और परिणमन ये दो बात चलती रहे तो ऐसा ही समझना कि ये दोनों स्वभाव की चर्चा चलती है। अभी एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, अभी वो पर्याय कैसी है तो कि वो पर्याय अपरिणामी तत्व में नहीं है क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, एक उत्पादी वाला है एक ध्रुव वाला है, तो दोनों पृथक पृथक है। अभी वो पृथक पृथक में आप उसको एक साथ देखो तो वो प्रमाण का विषय हो जाता है, दोनों को आप स्वतंत्र देखो तो पर्याय पर्याय से है, द्रव्य द्रव्य से है। अभी उसको आप ऐसे देखो कि अभी वही पर्याय जो पर्याय का निषेध कर दिया तो वो पर्याय तो अभी चली गई, वो समय में अभी दूसरी नई पर्याय उत्पाद हुई, वो पर्याय क्या करती है तो कि वो आत्मा का समीप होके आत्मा को देखती है, तो आत्मा का समीप होके आत्मा को जब वो पर्याय देखती है तो वहां निर्विकल्प प्रमाण जन्म लेता है। तो ये बात ऐसी है, एक प्रमाण सविकल्प होता है, वो सविकल्प प्रमाण में से जब त्रिकाली द्रव्य ख्याल में आता है तो वो सुदनय का विषय बन जाता है, सुदनय का विषय जब ख्याल में आता है उस पर दृष्टि पड़ती है तो जो वो द्रव्य पर्याय का स्वरूप एक साथ बनता है वो निर्विकल्प प्रमाण हो जाता है। तो ये स्थिति यहाँ दरेक बोल में ये स्थिति दिखा जा रही है। पहले दृष्टांत बताते हैं फिर सिद्धांत बताते हैं, हरेक बोल में ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। इस सिस्टम से अपन सुने तो इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, विकल्प भी नहीं होगा, और विकल्प नहीं होगा तो सब निर्विकल्प हो जाएंगे। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं गाथाओं में, अपन जो इस तरीके से सुने तो एकदम समझ में आ जाता है, कोई कठिन बात होती ही नहीं। आचार्य भगवान जब लिखते हैं ना तब ऐसे सोच के लिखते होंगे कि ये किसी के समझ में नहीं आएगी इसलिए मैं लिखता हूं, कि ऐसे लिखते होंगे कि ये सबके समझ में आ जाएगी इसलिए मैं लिखता हूं, सबको समझ में आए ऐसी ही बात होती है आचार्य भगवान, कोई कठिन नहीं होती। और अपने को समझ में नहीं आवे तो अपने धर्म पिता तो बैठे हैं अपने पास, अपन उसका प्रवचन निकाल लो पढ़ लो एकदम समझ में आ जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना कि इन लोगों को भी मैं बोलता हूं कि सबको ऐसा गुरुदेव का प्रवचन सुनाओ, इतना गुरुदेव का प्रवचन लोग सुनने लगे, रोज चार पांच छह घंटा गुरुदेव को ही सुने तो आपको हमको बुलाना ही नहीं पड़ेगा।
हमारी जरूरत क्या है, गुरुदेव हैं। इस तरीके से ये सब गाथाओं को सोचना कठिन कुछ होता ही नहीं, सब सरल ही होता है। जहाँ से आचार्य भगवान बताते हैं वहाँ से अपन देखे तो सरल है। अभी अपन ने बहुत लंबा चौड़ा विस्तार फैला के रखा है, फिर अपन वो विस्तार को पहले संकेलने का प्रयत्न करें फिर देखने का प्रयत्न करें तो बहुत कठिन है। वो जहाँ से दिखाते हैं वहाँ से देखना चाहिए। देखो ये बोल है दूसरा, जैसे तीसरा, समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियंत्रणा भूतार्थ है सत्यार्थ है, तो भी नित्य स्थिर ऐसा समुद्र स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपना अभूतार्थ है असत्यार्थ है। अब ये दृष्टांत में नियतपना को भूतार्थ बताते हैं, अनियतपना को अभूतार्थ बताते हैं। समुद्र को भूतार्थ बताते हैं, वृद्धि हानि की पर्याय जो लहरें चल रही है उसको अभूतार्थ बताते हैं। अभी एक को भूतार्थ बताते हैं एक को अभूतार्थ बताते हैं, उसका मतलब ही ये है कि वो भूतार्थ समुद्र है, वो लहरें है वो उसका पार्ट नहीं है, वो अभूतार्थ है, उसका पार्ट वो नहीं हो सकता। वो अपन ने जो अंदर में वो समुद्र को देखा होता है ना कि लहरें चलती है, तो समुद्र और लहरें दोनों एक ही दिखते हैं अपने को, मगर वहाँ समुद्र अलग है लहरें अलग ही है, वो अपनी दृष्टि में नहीं आती, इसलिए अपने को दोनों एक लगता है, दोनों है पृथक पृथक। वृद्धि हानि वाला प्रकरण में बदगट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और ये तो बदगट के बिना का अघटित घाट है। चैतन्य परमात्मा अघटित घाट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, वो तो अघटित घाट है। ऐसा ना ऐसा, ऐसा ना ऐसा, ऐसा ना ऐसा हमेशा रहता है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है वो समुद्र है, वो समुद्र की उपमा देके चैतन्य परमात्मा को बता रहे हैं यहाँ। तो समुद्र में वृद्धि हानि रूप अवस्था की बात करके फिर वो आत्मा पे लगाते हैं। इसी तरह आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतपना भूतार्थ है। अभी आत्मा में भी जो पर्याय भेद से आप देखो तो अक्षर के अनंत में भाग वाला निगोद का जीव भी है, और केवल ज्ञान वाला अरिहंत का जीव भी है, और सिद्ध दशा में तो गुणस्थान रहित सिद्ध दशा वाला जीव भी है। तो ये वदगट वदगट जो आपको दिख रही है वो वदगट की अपेक्षा से देखो तो वो है, वो नहीं है ऐसा नहीं है। कोई बोले कि नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो है सही, मगर जब वो वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करो तो अनियंत्रणा भूतार्थ है सत्यार्थ है, तो भी नित्य स्थिर। नित्य स्थिर कौन है? जैसे समुद्र नित्य स्थिर है, ऐसा अपना चैतन्य परमात्मा भी नित्य स्थिर है। तो वो समुद्र की उपमा देके चैतन्य परमात्मा नित्य स्थिर को यहाँ सिद्ध करते हैं कि ऐसे ही अपना नित्य स्थिर निश्चल ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर, नित्य स्थिर निश्चल ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर, उसकी समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपना अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। देखो सब बात ये दो तीन लाइन में बता देते हैं जो अपन ने पहले बोला ना, वो एक त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि करते हैं कि आत्म स्वभाव कैसा है तो कि वो नित्य स्थिर है। बाद में कहते हैं कि वृद्धि हानि वाला जो तेरा परिणमन पर्याय में चल रहा है वो कैसा है तो कि वो अस्थिर है अनियत है, इसलिए वो अभूतार्थ है। तो एक भूतार्थ स्वभाव हो गया, एक अभूतार्थ हो गया। अभी ये भूतार्थ और अभूतार्थ का पहले तो भाग पाड़ो आप, पहले भाग पाड़ो। कोई बोलते हैं कि प्रमाण का द्रव्य में आप कटका क्यों करते हो, आप तो प्रमाण का द्रव्य प्रमाण रूपी रखो ने, तो क्या भैया प्रमाण का द्रव्य में अगर हम उसको कटका नहीं करेंगे ने तो फिर वो निर्विकल प्रमाण में जो सांध होगी ने वो भी नहीं हो पाएगी। अभी लालचंद भाई की बात कर रहे थे, लालचंद भाई ये दृष्टांत देते थे, ये सबने सुना है ये सब दृष्टांत, और इसमें रहित और सहित की ही बात आती है। तो लालचंद भाई जयपुर बहुत जाते थे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, साल में एक बार वो 20-20 दिन जाते थे। ये जयपुर वाले सब होंगे उनको सब मालूम है, तो वो जाते थे ना, तो वहाँ लोग वो सब लोग बोलते थे कि ये रहित पूर्वक सहित की रमत वाले पंडित जी आ गए हैं। क्या रहित पूर्वक सहित की रमत वाले पंडित जी? तो इसमें रहित क्या, इसमें सहित क्या है? पहले तो त्रिकाली द्रव्य जो है, ये जो समुद्र है, ये जो नित्य स्थिर जो चैतन्य स्वभाव है, उसको पहले में पहले तो सर्व पर्याय भेदों से रहित देखो। पहले में पहले श्रद्धा का विषय सिद्ध करो कि भाई पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य है, वो श्रद्धा का विषय है, वो दृष्टि का विषय है। तो पर्याय से रहित बना पहले सिद्ध किया, तो पर्याय से रहित बना सिद्ध किया, तो पर्याय से रहित कौन है? तो के नित्य स्थिर आत्म स्वभाव है। तो के पर्याय क्या है? तो के पर्याय से सहित तुम मानोगे द्रव्य को, तो वो प्रमाण का विषय हो गया। अभी वो प्रमाण में से पहले शुद्धने का विषय निकालो, पर्याय में पर्याय को रहित करके शुद्धने का विषय त्रिकाली द्रव्य निकालो, तो पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य हो गया। अभी पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य हो गया, तो प्रमाण का विषय में दो पार्ट हो गया, एक द्रव्य हो गया, एक पर्याय हो गया। अभी उसमें तो अनुभूति नहीं होती, अभी दो विभाग कर दिया तो अनुभूति कहां से होगी? वो तो दोनों पृथक पृथक है। अनुभूति तो क्या होता है कि वो दोनों का भेद ही नहीं दिखे और वो पर्याय अपने ज्ञायक में अहम करने के लिए चली जाए वहां पे, तब ही अनुभूति का जन्म होता है। तो यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपना अभूतार्थ है। अभी आत्म स्वभाव की समीप तो उसको जाना पड़ेगा, तब तो वो अनियतपना अभूतार्थ होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक तो भूतार्थ रहेगा। तब तक द्रव्य भी खड़ा रहेगा, पर्याय भी खड़े रहेगी, द्रव्य भी खड़ा रहेगा, पर्याय भी खड़ी रहेगी। तो ये पर्याय से रहित जब द्रव्य को देखता है, तो पर्याय से रहित द्रव्य को देखा, तो वो देखा किसने? तो कि ये आत्म स्वभाव की समीप जाके देखा, तो वो देखने वाली पर्याय है, वो द्रव्य से अभेद हो जाती है। तो पहले प्रमाण में दो भेद पाड़े और वो दो भेद को ऐसा अभेद कर दिया कि वो अभी भेद दिखता ही नहीं। तो वो बोलते थे लालचंद भाई कि एक आदमी वो कपड़ा लेने के लिए बाजार में गया, उसको जबा सिलवाना था, तो अभी वो तो दर्जी के पास गया जब कपड़ा लेके, फिर उसने वो कपड़ा तो वो काटने लगा, नाप लेके, बोले काटना मत भैया, नहीं तो मेरा प्रमाण का विषय चला जाएगा। तो क्या भैया, अगर मैं काटूंगा नहीं तो पहले तो जबा नहीं बनेगा। तो फिर उसने क्या बोला, काटना नहीं है। फिर वो कपड़ा पहन के मार्केट में निकल पड़ा, सब लोग पूछने लगे, आप समझे ना क्या पूछते हो? तो फिर वो गया वो टेलर के पास, उसको बोला कि भैया ये तो आप तो लो कपड़ा और इसका मेरे को जब्बा बना दो। फिर वो टेलर ने बोला कि भैया आप वापिस चले गए, आपको थोड़ा मेरी बात तो सुननी चाहिए, मैं काटूंगा तो सही, मगर फिर सांध भी ऐसी करूंगा कि दिखेगा ही नहीं कि काटा था। ये ऐसा स्वरूप है, पहले द्रव्य पर्याय का विभाग करो, फिर वो पर्याय आत्म स्वभाव की समीप जाके, वो आत्म स्वभाव की समीप जाके जब वो अंतर्लीन हो जाती है, तब वो कुछ भेद दिखता ही नहीं। और खाली कपड़ा पहनने की कीमत कुछ नहीं है, वो कपड़े में से जब्बा सिलाई वाला पहनो तो माने कि बराबर दिखता है। इसीलिए ये निर्विकल्प प्रमाण होता है ना, तब वास्तव में द्रव्य पर्याय दोनों सिद्ध होती है। अकेला प्रमाण का द्रव्य आगम वाला है, उसमें मात्र द्रव्य पर्याय है, वो विभाव स्वरूप प्रमाण है। और जो प्रमाण में से शुद्धने का विषय निकाल के मैं आत्म स्वभाव त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा सब उसकी समीप जाके नजर पड़ती है, तब वास्तव में द्रव्य उसके ख्याल में आता है कि द्रव्य ऐसा है। ऐसा द्रव्य ख्याल में आता है पर्याय में, मगर वहां द्रव्य पर्याय का भेद नहीं रहता। ऐसे ही ये समुद्र का जो लहर है ना, वो लहर है, वो समुद्र का भाग ही नहीं है। ये वृद्धि हानि वाली पर्याय है, वो द्रव्य का विभाग ही नहीं है। पहले तो वो द्रव्य सिद्ध करो, पहले में पहले वो विभाग लहर जो है वो अंशी का अंश है, वो है अंशी का अंश, मगर उस अंश को पहले अंशी में से बात कर दो, उसको सोचो ही मत। पहले अपना अंशी को ही सोचो कि भाई मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी परिपूर्णता कहाँ है, मेरा नित्य स्वभाव कैसा है, मेरा ज्ञायक भाव कैसा है, मेरा भूतार्थ स्वभाव कैसा है, मैं परिपूर्ण किससे मैं परिपूर्ण हूं, कि मेरे स्वभाव से परिपूर्ण हूं, तो वो स्वभाव कौन सा है? तो कि वो स्वभाव में तो गुण भी बसते हैं और वो नित्य स्थिर, नित्य स्थिर, नित्य स्थिर। तो नित्य स्थिर पर्याय कौन सी होती है? केवल ज्ञान की पर्याय नित्य स्थिर होती है, मति श्रुति की पर्याय नित्य स्थिर होती है, तो के उत्पाद व्यय वाली पर्याय नित्य स्थिर कभी नहीं होती। तो उसके लिए उत्पाद व्यय बिना की कोई पर्याय है द्रव्य में, वो नित्य स्थिर है। तो वो वास्तविक में पूरा आत्मा ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वाला वो आत्मा नित्य स्थिर है। ऐसा पर्याय में ये भाव चल जाए द्रव्य तरफ तो उसको अनुभूति का जन्म होता है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। ये बोल जो है ना, ये बहुत माने कि हानि वृद्धि वाला बोल बहुत अच्छा है। देखो इसमें इतनी स्पष्टता की है गुरुदेव ने, उसमें क्या है कि ये जो लहर को और समुद्र को दोनों साथ में देखता है ना, वो तो प्रमाण में ही खड़ा है। अभी प्रमाण में से जब तक वो शुद्ध नहीं निकालेगा तब तक तो वो सही प्रमाण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले समुद्र का विभाग जो है वो सचमुच में लहरें है ही नहीं। समुद्र की सपाटी तक समुद्र होता है, वो सपाटी के ऊपर जितनी लहरें चलती है वो लहरें है, वो समुद्र का विभाग ही नहीं है। और समाज समुद्र की सपाटी तक समुद्र है, वो समुद्र बहता बहता सपाटी का सपाटी तक आता है ना, तब उसको समुद्र बोला जाता है। और वो सपाटी के बाहर जब लहरें चलने लगती है ना, तो वो पर्याय हो गई। वो समुद्र अंदर से ऐसे हिलोड़ा मारता हुआ हुआ ये समुद्र सपाटी तक आता है और सपाटी में से अंदर चला जाता है, उसको बोला जाता है अंदर में ध्रुव का प्रवाह चलता है। ध्रुव का प्रवाह निरंतर चैतन्य का नूर का पूर वो अंदर त्रिकाली द्रव्य में सपाटी तक निरंतर चलता रहता है। वो सपाटी तक निरंतर चलता है, वो समुद्र की उपमा देके पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण सूत्र पर्याय में भी डाला है। तो वो सपाटी तक अंदर चलता रहता है, उसमें अंदर में त्रिकाल का त्रिकाल जानना देखना चलता है। त्रिकाल में त्रिकाल का त्रिकाल जानना देखना, अंदर में नित्य स्थिर अपना आत्म स्वभाव में निरंतर वर्त रहा है, उसको कोई पर्याय ने उसको जाना कि पर्याय ने उसको नहीं जाना, अरे वो पर्याय उसका स्पेयर पार्ट ही नहीं है। उसका जो विभाग है समुद्र का विभाग, आत्मद्रव्य का विभाग, वो आत्मद्रव्य में रहता है। वो आत्मद्रव्य की संपत्ति आत्मद्रव्य में रहती है, आत्मद्रव्य की समृद्धि आत्मद्रव्य में रहती है, आत्मद्रव्य की चैतन्यता आत्मद्रव्य में रहती है, आत्मद्रव्य का ज्ञान दर्शन आत्मद्रव्य में रहता है। अभी जो पूछते थे ना वो निर्विकल्प और सविकल्प, वो निर्विकल्प और सविकल्प अंदर में त्रिकाल है। निर्विकल्प माने दर्शन और सविकल्प माने सविकल्प ज्ञान का स्वभाव है। वो सविकल्प माने विकल्प सहित नहीं है, वो दर्शन माने निर्विकल्प माने कि अवलोकन सामान्य अवलोकन, और ज्ञान माने सविकल्प, सविकल्प माने माने कि जानना 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 जानना। वो त्रिकाली द्रव्य में अंदर में ऐसा एक ज्ञान त्रिकाल पड़ा है, वो त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन अपना पूरा चैतन्य परमात्मा त्रिकाली द्रव्य उसके अनंत गुण उसकी अनंत कारण पर्याय उसको देखने वाला एक त्रिकाल दर्शन है। वो त्रिकाल दर्शन है, वो आत्मा को माने कि अभेद पड़े देखता रहता है, उसको बोला जाता है त्रिकाल दर्शन। और जो उसमें त्रिकाल ज्ञान है वो त्रिकाल ज्ञान आत्मा को द्रव्य भी देखता है, उसको गुण भी देखता है उसका, उसकी प्रत्येक गुण की प्रत्येक कारण सूत्र पर्याय को भी त्रिकाल ज्ञान देखता है। तो वो द्रव्य गुण और कारण पर्याय को भेद रूप भी वो जान लेता है, और वही समय में वही ज्ञान उसको अभेद रूप भी जान लेता है। उसका नाम त्रिकाल ज्ञान का सविकल्प स्वभाव है। सविकल्प पना नहीं, सविकल्प पना वो पर्याय में होता है, सविकल्प स्वभाव होता है वो त्रिकाल में होता है। पर्याय में भी सविकल्प स्वभाव होता है ज्ञान का, मगर वहां सविकल्प पना, सविकल्प पना माने के विकल्प सहित पना की चर्चा इसमें नहीं है। यहाँ पे यहाँ त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन अपने ध्रुव स्वभाव में अंतर में ऐसा है कि वो अपने पूरे स्वभाव को जानता देखता हुआ निरंतर वर्त रहा है। ये सब बातें नियम सार की तीसरी गाथा से शुरू करके पंद्रहवीं गाथा तक ये चर्चा आई है। तीसरी गाथा में उसको कहा है शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, सातवीं गाथा में कहा है उसको कारण परमात्मा, नौवीं गाथा में कहा है उसको कारण जीव, दसवीं गाथा में कहा है उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम, ग्यारहवीं गाथा में कहा है उसको स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, तेरहवीं गाथा में कहा है उसको कारण दृष्टि, चौदहवीं गाथा में कहा है परिसमता भेदम गच्छति इति पर्याय कि सर्व प्रकार से भेद को प्राप्त होवे वो पर्याय कहा जाता है, और पंद्रहवीं गाथा में पूजित पंचम भाव की परिणति वो कारण शुद्ध पर्याय है। ऐसा बात कह के पद्म ब्रह्मधारी देव ने ये बात नियम सार में स्पेशल लिखी है। और भी कहीं जगह पे ये बात है, गुरुदेव ने इसका विस्तार इस तरीके से किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें गुरुदेव ने बहुत सी बातें लिखी है, 77 से 81 गाथा परमात प्रतिक्रमण की नियम सार में है, उसके बाद का 109 नंबर वाला श्लोक है उसमें भी ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाली है। इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है मेरा कि ये नित्य स्थिर जो अपना चैतन्य स्वभाव है ना, उसमें अनंत वैभव पड़ा है। ऐसा ऐसा वैभववान मेरा वैभवशाली आत्मा है कि इतना वैभव पड़ा है, इतना वैभव पड़ा है कि वो ज्ञान उसकी खोज करने के लिए अंदर जाए न फिर वो ज्ञान वहां से बाहर ही नहीं आता, इतना अंदर वैभव पड़ा है। ऐसा वैभवशाली आत्मा है, ऐसा समृद्धशाली आत्मा है, ऐसा अनंत गुण की संपत्ति लेके बैठा है, अनंत कारण पर्याय की संपत्ति लेके बैठा है। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा अंदर में ध्रुव रूप विराजमान है, उसको बोला जाता है नित्य स्थिर। नित्य स्थिर, नित्य स्थिर माने कि नित्य पने वो स्थिर ही रहता है। तो भैया स्थिर रहता है, आप एक तरफ बोलते हो स्थिर रहता है, एक तरफ आप बोलते हो त्रिकाल ज्ञान में द्रव्य को भी जानता है, गुण को भी जानता है, कारण पर्याय को भी जानता है, तो ये तो भेद हो गया, ये तो कहाँ स्थिर रहा, ये तो विकल्प हो गया, ये तो भेद रूप परिणमन हो गया। तो क्या भैया तुमने जो पर्याय से द्रव्य को भेद करके देखने का प्रयास तेरा अनादि से चलता है ना, ऐसा भेद अंदर में नहीं है। अंदर में जानना देखना स्वाभाविक जानना देखना है, स्वाभाविक जानना देखना चलता है, वहां कुछ भेद रूप नहीं होता। वहां वो त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन अलग नहीं होते, वहां कारण पर्याय गुणों से अलग नहीं होती, वहां गुण द्रव्य से अलग नहीं होते, पूरा अखंड एक स्थिर परमात्मा है। वो पूरा अखंड एक दृष्टि का विषय ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष मिलके है, उसमें ये सब अंदर में वर्त रहा है, वर्त रहा है, क्रिया कुछ भी नहीं है, निष्क्रिय पड़े वर्त रहा है। ऐसा एक वैभवशाली स्वभाव मेरा अंदर चैतन्य सामान्य, ऐसा चित सामान्य, ऐसा नायक भाव सामान्य स्वरूप, ऐसा मेरा वैभवशाली परमात्मा अंदर पड़ा है। वो कैसा है कि नित्य स्थिर है, नित्य स्थिर है, नित्य स्थिर है। अभी इतनी अंदर की गहराई का सोचने का जीव शुरू करे तो वो गहराई सोचने वाला कौन है, वो तो ज्ञान की पर्याय है, वो तो वर्तमान उत्पादन वाली पर्याय सोचती है, वो सब वो विचार कौन करता है, वो तो ज्ञान की पर्याय करती है। तो वो ज्ञान की पर्याय किसका विचार करती है ना, वो इंपॉर्टेंट है, कौन विचार करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। विचार ज्ञान की पर्याय में चलता है निरंतर, मगर विचार किसका चलता है, अपने ध्रुव स्वभाव का विचार तक चलता है कि वर्तमान रागादि रूप पर्याय का विचार चलता है, अपने ध्रुव स्वभाव में अंदर गहराई में क्या पड़ा है उसका विचार चलता है, उसमें कितना गहन विचार चलता है, अखंड हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, स्थिर हूं, एक रूप हूं, ये तो है ही भैया, इसकी कौन मना करेगा, वो तो सब शास्त्र में आता है, ज्ञानियों ने बोल दिया है, वो तो है ही, मगर उसमें क्या है अंदर, वो एक है तो उसमें एक में अंदर क्या भरा है, वो अनादि अनंत है तो अनादि अनंत में क्या भरा है अंदर में, उसका अंदर जाके वैभव तो देखो आप। विकल्पात्मक दशा में भी ज्ञान पर्याय में ऐसा विचार में ऐसा अंतर का स्वरूप का भी अगर उसको विचार चलेने तो वो भेद जो है ज्ञान पर्याय का वो अभेद को अभिनंदन करता हुआ उसमें भेट जाएगा। ऐसी संपत्ति है, ऐसे महिमावत चैतन्य परमात्मा अंदर पड़ा है, उसको अगर ऐसी संपत्ति का विचार चलने लगे ने यो हो मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मैं तो आज तक राग आदि पर्याय को छोड़ के मणिज्ञान की पर्याय को अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहा था, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना वैभव मेरे अंदर में पड़ा है, वो वैभव को ही मैं पहले विचार में ले लूँ ना। गुरुदेव ने शक्तियों का प्रवचन में कितनी चर्चा कर दी, कितनी चर्चा कर दी, एक एक शक्ति के प्रवचन में शक्तिवान को बताते हुए चर्चा करते गए। चर्चा शक्ति की चलती है मगर बता रहे शक्तिवान को, चर्चा भेद की चल रही है, बता रहे हैं अभेद, क्योंकि अभेद की तो कोई चर्चा ही नहीं होती, अभेद की चर्चा हो जाए तो भेद ही हो जाए। तो ये इसमें जो अंदर में जो वैभव पड़ा है वो वैभव कैसा वैभव है, कैसा मैं नित्य स्थिर हूं और कैसी मेरी संपत्ति अंदर में पड़ी है, मेरा ध्रुवधाम कैसा है, मेरी अंदर की ध्रुवता कैसी है, मेरी अंदर का ध्रुवत्व कैसा है, एक मेरा ध्रुव है, एक मेरा ध्रुवत्व है और एक मेरी ध्रुवता है, वो तीनों मिलके एक अखंड एक चैतन्य परमात्मा है। ध्रुव माने द्रव्य, ध्रुवत्व माने उसका गुण और ध्रुवता माने उसकी कारण पर्याय, वो तीनों मिलके एक चैतन्य दृष्टि का विषय है, एक नायक भाव है, एक भूता स्वभाव है। ऐसी संपत्ति अंदर में पड़ी है, ऐसा वैभववान मैं हूं, ऐसा नित्य स्थिर हूं, ऐसा अनादि अनंत हूं, ऐसा अभेद अखंड चैतन्य परमात्मा हूं, ये सब विचार ज्ञान की वर्तमान उत्पाद वाली पर्याय में चलता है और वो पर्याय में ये विचार चलने लगे तब उसको पता चले कि ये नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर, अभी उसकी समीप जाके उसको देखने लगे तो ये सब अभूतार्थ है, सब अभूतार्थ है, सब असत्यार्थ है, बच स्पष्ट आदि भाव सब असत्यार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, माने मुझे दिखते ही नहीं है, माने कि होते हुए भी मेरे में है ही नहीं, ऐसा। तो ये नियत वाला बोल है, नियत वाला बोल में ये काल का बोल है, काल माने द्रव्य और क्षेत्र का पहला और दूसरा बोला गया, ये काल का बोल है। काल में एक स्वकाल होता है, एक परकाल होता है। परकाल क्या है कि लहरें हैं ना, वो परकाल है रजनी भाई, ये लहरें हैं वो परकाल है और समुद्र है वो स्वकाल है। तो ये स्वकाल और परकाल दोनों का विभाग करो, परकाल है वो मेरा स्वरूप नहीं है, स्वकाल जो नियत है वो मेरा स्वरूप है, इसलिए द्रव्य स्वद्रव्य मेरा, स्वक्षेत्र मेरा, स्वकाल मेरा और पर द्रव्य माने की बद स्पष्ट आदि भाव माने की पर क्षेत्र माने अन्य अन्य गति, परकाल माने की अनियतता माने की वृद्धि हानि, वो सब परकाल में गया, उसको परकाल में डाला तो यहां स्वकाल में त्रिकाली द्रव्य हो गया, वो स्वकाल हो गया। स्वकाल माने के पर्याय में स्वकाल आता है वो नहीं, स्वकाल माने अपनी त्रिकालता, अपनी त्रिकालता, त्रिकालता माने तीनों काल ऐसा में ऐसा जो रहे उसको बोला जाता है अपनी ये त्रिकालता है। कोई काल में माने कि उसका कोई परिवर्तन ही नहीं होवे, ऐसी त्रिकाल का त्रिकालता अपने त्रिकाल स्वभाव में भरी हुई है। एक स्वद्रव्य के सामने परद्रव्य, स्वक्षेत्र के सामने परक्षेत्र, स्वकाल के सामने त्रिकाल के सामने परकाल, ऐसा ये द्रव्य क्षेत्र काल और अभी भाव से अपन उसको समझेंगे। ये जो समुद्र का बोल है उसमें अपना समुद्र स्वरूप भगवान आत्मा बताया गया है, उस चैतन्य स्वभाव जो अपना है वो इतना जाज्वल्यमान है, जिसे समुद्र है ना, समुद्र उसमें लहरें उठती है ना, लहरें तो बाहर है, अभी उसका डगमाड़ है ना बहुत ऊंडाई से गहराई से आता है बाहर, वो ऊपर ऊपर से ही मोजे नहीं उठते हैं, कहने में ऐसा आता है कि सपाटी पर से मोजा उठा है? अभी वो सपाटी पर से उठता है मोजा, कितनी गहराई से वो मोजा उठता 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 सपाटी को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। तो जब जहां से भी जो वो समुद्र में से मोजा उठा है वो ये शब्द गुरुदेव ने डाला है 141 कलश में। आप सुन लेना कलश टीका का प्रवचन, अच्छा अच्छा वाला है प्रवचन वो 141 कलश, वो नए साल का सुप्रभात वाला प्रवचन है, उसमें ये पूज्य गुरुदेव श्री ने ये शब्द डाला है कि अंदर गहराई में से डगमगाट उठता है, वो उठता 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 सपाटी तक आता है, तब तक वो उसकी ध्रुवता है, वो ध्रुव है, ध्रुवत्व है और उसकी ध्रुवता है। अभी वो ध्रुव ध्रुवत्व ध्रुवता अंदर ऐसे ध्रुव का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उसको बोला जाता है दृष्टि का विषय। मैंने बोला कि भाई वहां दृष्टि का विषय में कोई शुष्कता नहीं है, ऐसे ही स्थिर पड़ा है। उसका मतलब ये है कि जैसे पत्थर पड़ा हो 50 साल के बाद देखो तो ऐसा ऐसा पत्थर दिखे, ऐसा ध्रुव नहीं है, ऐसा स्थिर अक्रिय बिंब नहीं है वो ध्रुव, उसमें चैतन्य चहल पहल चलती है अंदर में, चैतन्य की चहल पहल, बाबूजी ने लिखा है ना, वो चैतन्य की चहल पहल है अंदर में, अंदर में ध्रुव की ध्रुवता में ज्ञान दर्शन बरस रहे हैं अंदर, वो चैतन्य का रस पड़ा हुआ है अंदर में। ऐसी एक स्थिति है अपनी वैभववान परमात्मा की, ऐसा जो परमात्मा है ऐसी ध्रुव की ध्रुवता, चैतन्य का नूर का पूर, ऐसे ही ज्ञान दर्शन में त्रिकाल का उसकी अंदर स्वभाव में चल रही है निरंतर, जागृत जीवन है उधर, एक जागृत जीवन है, जीवंत है अंदर में, अंदर में जीवत्व पड़ा है, जीवत्व शक्ति में चैतन्य प्राण से जीवंत होने वाला जीवन है अंदर, ऐसा एक चैतन्य परमात्मा अंदर बस रहा है। ऐसा चैतन्य परमात्मा को छोड़ के जीव अनादि से पर्याय के पीछे ही पड़ा है, ये पर्याय कब सुधरेगी, ये पर्याय द्रव्य की तरफ कब जाएगी, ये पर्याय में ऐसा हो गया, ये पर्याय में ऐसा हो गया। अरे भैया वो तो तेरा विभाग ही नहीं है, तेरा विभाग सब अंदर में है, वहां तू चला जा, उसकी सोच कर, उसकी गहनता में जा, उसका विचार कर, उसका संशोधन कर। ज्ञान हमेशा संशोधन के लिए तैयार रहता है, वो संशोधन करता ही रहता है, कहीं भी हो ना ज्ञान वो हमेशा संशोधन चालू रहता है, उसकी वृत्ति ही शोधक वृत्ति होती है ज्ञान की। ऐसी शोधक वृत्ति ज्ञान में बना ले चैतन्य परमात्मा को ढूंढने की, ये अंदर में कैसा स्वभाव है। मैं तो ऊपर ऊपर से ही बात करता हूँ, सबको ऐसा ही लगता है कि ये ऊपर ऊपर से ही हम तो सोचते हैं पर्याय ऐसी है, पर्याय ऐसी हो गई, पर्याय पर तरफ चली गई, पर्याय स्व तरफ कैसे जाएगी। अरे भैया तू तेरा चैतन्य परमात्मा कैसा है तो पहले सोचने का शुरू कर। खाली तू चैतन्य परमात्मा माने नायक बोलता है, मगर वो नायक कितना वैभवशाली है, कितनी अंदर तेरी संपत्ति पड़ी है कि वो संपत्ति को तू एक बार देख लेगा ना तो तुझे और कुछ रुचेगा ही नहीं, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूं, ऐसे अंदर में डूब जाएगा। ऐसी संपत्ति है अंदर में, इसलिए उसकी संपत्ति को समझने का पहले में पहले प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले ये गुरुदेव का शक्तियों का प्रवचन आप सुनो, 42 प्रवचन है, इतनी स्पष्टता है उसमें, इतनी स्पष्टता है कि आप रहोगे ना उसमें सुनते सुनते तो अभेद के भेद तक ही पहुंचोगे, भिन्न में जाओगे ही नहीं आप, अभेद के भेद में पहुंचोगे तो वो भेद अभेद को प्रसिद्ध कर देगा। आप भिन्न में चले गए तो भिन्न तो अभेद को या तो भेद को किसी को प्रसिद्ध नहीं कर सकता, अभेद का भेद होता है वही भेद अभेद को प्रसिद्ध कर सकता है। इसलिए वहां आप शक्ति कैसी है, मेरा शक्तिवान कैसा है, अनंत शक्तियां उसमें कैसी भरी है, अनंत शक्तियों का स्वरूप कैसा है। गुरुदेव तो कितनी चर्चा करते हैं उसमें, कितनी चर्चा करते हैं। गुरुदेव ने एक बार वो 47 शक्ति कड़कड़ाहट बोलते थे गुरुदेव तो, है ऐसे बोल जा रहे, बच्चे बोलते हैं अभी, कोई बड़े लोग बोलते हैं, वो बोलने की स्टाइल और गुरुदेव की बोलने का भाव उसमें बहुत फर्क है। तो गुरुदेव को एक बार किसी ने बोला कि आपको ये मुंह पे है 47 शक्ति, ऐसा गुरुदेव को बोला कि आपको मुंह पे है, तो गुरुदेव ने बोला ये तो हमारा नित्य क्रम है। फिर गुरुदेव ने एक बात बोली, उसके लिए मैं ये बात छेड़ता हूँ। गुरुदेव ने वो शक्ति बोला तो उसने पूछा ना कि आपको ये मुँह पे है, तो गुरुदेव ने ऐसा बोला कि हम इसका स्मरण भाव से करते हैं, इसीलिए ये जो हम बोलते हैं ना वो स्मरण में से आता है, वो हम उसका भाव से स्मरण करते हैं रोज, और वो भाव का स्मरण करते हैं, इसलिए हम जब बोलते हैं ना तो वो स्मरण में से वो निकलता है, ये ऐसा गुरुदेव ने बोला। तो ऐसे अपने धर्म पिता है, वो जिस तरीके से स्वाध्याय करते थे, वो जिसका स्वाध्याय करते थे, उसके पीछे अपने को पहले पढ़ना चाहिए। अगर ऐसी जो अपनी संपत्ति पड़ी है और वो संपत्ति अपन को उसने दिखाई है, तो पहले उसको ढूंढना चाहिए, सब छोड़ के पहले ये प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी शक्ति कैसी है, मैं कैसा शक्तिवान हूँ, कितनी शक्तियाँ भरी है। 47 तो लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, गुरुदेव ने 54 शक्ति निकाली है, खुद निकाली है बहुत से शास्त्रों में से 54 शक्ति निकाली गुरुदेव ने, तो 101 शक्ति हो गई, मगर वो तो अनंत शक्ति का जड़ी है, ज्ञायक भाव है, वो तो अनंत शक्ति पड़ी है उसमें। अरे भैया ऐसा है दोस्तों, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, यहाँ भी बहुत बार बोला है, मगर हर बार बोलता हूँ मैं, दोष बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, दो ही दोष है, ज्यादा दोष ही नहीं है, एक अभिप्राय का और एक अस्थिरता का, दोष दो ही है। अभिप्राय का दोष तो एक समय में जाता है, एक ही समय में, और अभी तो क्या है, ऐसी योग्यता वाले जीव नहीं है, इसलिए अंतर्मुख में अस्थिरता का दोष नहीं जाता है, बाकी तो उसका काल भी अंतर्मुख से ज्यादा है ही नहीं, इसलिए बहुत दोष कम है। और गुण कितने है, अनंत है गुण, उसका वैभव कितना, उसकी शक्ति कितनी, समृद्धि मेरी कितनी है? छोटा सा दोष है, वो दोष दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता है, मगर दोष दूर करने का पुरुषार्थ भी इसको जानने से होता है। तो पहले में पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको समझेगा दोष खड़े ही नहीं रहेंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे दोष। ऐसा यहां बता रहे हैं कि ये आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये तीसरा बोल अपना हो गया, अभी चौथा बोल शुरू कर देते हैं। चौथा बोल है ना, वो भी अंदर के भेद का है, वो गुण भेद का प्रकरण है। जैसे छठी गाथा में पर्याय भेद बताया, सातवीं गाथा में गुण भेद बताया समय सार में, ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान ने तीसरे बोल में पर्याय भेद बताया, चौथे बोल में गुण भेद बता रहे हैं, और उसका निषेध करके गुणी बता रहे हैं, त्रिकारी द्रव्य बता रहे हैं। देखो इसमें सब क्रम से आया है, पहले कर्म की चर्चा आई है बल स्पष्ट में, बाद में गति की चर्चा आई है, बाद में पर्याय भेद लिया है, बाद में गुण भेद लिया है, बाद में वो संयुक्त परामोह के साथ सुख दुख की कल्पना ली है आकुलता। तो ये क्रम से बोल है सब एकदम, ऐसे ही आचार्य भगवान नहीं लिखते, पूरा क्रम से लिखते हैं, मगर वो क्रम और अंदर का क्रम, अंदर को देखने से सब अक्रम हो जाता है, कुछ क्रम रहता ही नहीं, अक्रम रूप से आत्मा को जान लेता है, उसमें कोई क्रम नहीं है कि अवधपना पहले है, अनन्यपना है, फिर नियत है, फिर अविशेष है, असंयुक्त है, ऐसा कोई क्रम नहीं होता। ये तो सिद्धि करते हैं पांच भाव से, ये तो एक रूप भाव, इसलिए यहाँ वो गुण भेद का प्रकरण है। जैसे सुवर्ण का चिकनापना, पीड़ापना, भारेपना आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपना भूतार्थ है। देखो सुवर्ण है ना, तो सुवर्ण के गुण बता रहे हैं, सुवर्ण के गुण क्या होता है, तो चिकास होती है उसमें, पीलापन उसका कलर होता है, माने कि भारेपना माने कि वजन होता है। तो ये सब चीज जिसमें होवे उसको सोना बोला जाता है, सुवर्ण बोला जाता है। तो ऐसा सुवर्ण सुवर्णपना आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करो तो विशेषपना भूतार्थ है। जैसे गुण को एक एक गुण को देखो तो सुवर्ण में ऐसे गुण होते हैं, तो ऐसा विशेषपना तो सुवर्ण में है, सुवर्ण में ऐसा गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं है, गुण तो है सुवर्ण में, एक 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 गुण करके देखो तो ये सुवर्णपना में चिकास है, हल्का भारीपन है, ये पीलापन है, ये सब है। वो उसको गुण को देख के जाना है गुणी पर, क्योंकि पहले ही बोलते हैं कि सुवर्ण के गुण, तो सुवर्ण है उसके गुण है, सुवर्ण गुण नहीं है, सुवर्ण के गुण बता रहे हैं। तो सुवर्ण के चिकनापना, पीड़ापना, भारीपना आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गया है ऐसा सुवर्ण स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसको एक एक गुण से देखो तो उसका गुण भेद दिखता है, और उसको अभेद से गुणी को देखो, सुवर्ण को देखो, तो माने कि उसका गुण का भेद उसमें विलीन हो गया है, माने कि उसमें ही अंतर्लीन हो गया है, माने कि वो कहीं बाहर नहीं चलाता जाता गुण भेद। पर्याय भेद तो द्रव्य में होता ही नहीं, गुण तो द्रव्य में होता है, पर्याय तो द्रव्य में होती ही नहीं है, इसलिए वो तो भिन्नता वाला प्रकरण है। यहां तो क्या बता रहे हैं कि द्रव्य में न द्रव्य में जो स्थिति है, एक द्रव्य में न द्रव्य में गुण है। जैसे कि अपन शक्कर लेवे तो शक्कर की मिठास उसका गुण है, शक्कर की सफेदाई उसका गुण है, शक्कर का वजन भी उसका गुण है, तो वो जो चीज है वो शक्कर में ही रहती है, शक्कर के बाहर नहीं रहती है वो चीज, और शक्कर के बाहर नहीं रहती, और उसको तुम तो उसमें से मिटा नहीं सकते हो, उसको तुम उसमें से हटा नहीं सकते हो। अब जब पर्याय तो है, वो पर्याय तो उत्पाद में स्वभाव है उसका, इसलिए वो द्रव्य में नहीं रहती है, और ये गुण है वो तो द्रव्य में शामिल है, द्रव्य में शामिल होने की होने से इसमें यहाँ सर्व विशेष विलय हो गया है ऐसा लिखा है। सर्व विशेष माने कि अभूतार्थ हो गया ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं, मगर वो विलय करके कहना चाहते हैं। विलय माने कि गुणी में गुण है, वो गुण निकल नहीं सकते उसमें से, गुणी में से, मगर वो गुणी को देखने के लिए तू गुण को देखेगा तो तेरी भेद दृष्टि हो जाएगी, इसलिए भेद से देखने से वो भेद यथार्थ है, भूतार्थ है, मगर एक सुवर्ण को आप देखो तो उसमें कोई भेद दिखता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि सुवर्ण स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी तरह आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गया है ऐसा आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। देखो ये गुण भेद की चर्चा ऐसी है कि आप आत्मा में अनंत गुण है, उसमें सातवीं गाथा में लिखा ना ज्ञान दर्शन चारित्र मुख्य गुण से उसकी चर्चा की है, उसमें तो एक एक गुण है ना, वो एक एक गुण का भेद करके आप देखो ना तो एक एक गुण एक एक द्रव्य हो जाएगा। ऐसी गुण की स्थिति ऐसा गुणी नहीं है, गुण का भेद से आप देखोगे कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, ये सुख गुण है, ये प्रभु गुण है, ये विभू गुण है, ये सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सच्चित्त प्रकाश। अभी आप उसकी ही दृष्टि करते रहोगे तो आपको वही द्रव्य दिखेगा, वो गुण ही द्रव्य दिखेगा, मगर एक गुण द्रव्य कभी नहीं होता। एक गुण द्रव्य हो जाए तो कितना बड़ा दोष आ जाता है, क्योंकि आपको एक ज्ञान में ही ज्ञायक को मानोगे, या तो आप दर्शन में ही ज्ञायक को मानोगे तो देखना चालू रहेगा और जानना बंद हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए अंदर ने अंदर गुणी है, उसमें गुण है, गुण का भेद करके गुणी को समझाया जाता है, क्योंकि अज्ञानी प्राणी, अप्रतिबुद्ध जीव, अनार्य जीव, म्लेच्छ जीव, वो उसको भेद के बिना समझ में आता नहीं है, इसलिए भेद के समझाने का व्यवहार है। मगर वो भेद को छोड़ के भेद को जो अभूतार्थ जान लेता है, भेद को जो असत्यार्थ जान लेता है, उसकी दृष्टि अभेद पर चली जाती है। यहाँ सब बोल में यही दिखाना है, जितने जितने भिन्नता बता रहे हैं,
जितने जितने भेद बता रहे हैं, जितने जितनी गतियां का व्यंजन स्वभाव बता रहे हैं, मनुष्य देव तिर्यक नारक अन्य अन्य का ये कर्म की बात बता रहे हैं, मोह से संयुक्त पना बता रहे हैं, उसको सब को भिन्न करके अपने त्रिकाली स्वभाव पे दृष्टि कैसे जाए यही बता रहे हैं। देखो यहाँ तीसरा और चौथा बोल में कोई निमित्त की चर्चा नहीं आती है। पहला दूसरा और पांचवा बोल में निमित्त से भी चर्चा आई है, तीसरा और चौथा बोल में कोई निमित्त से चर्चा नहीं आई। समुद्र में हानि वृद्धि बताई और यहाँ गुणभेद बताया, और बाकी की जो तीनों बात है उसमें सब में निमित्त पना लिया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ स्वभाव की चर्चा है और वहाँ जो चर्चा है वो सब विभावों की चर्चा है, इसलिए वहाँ निमित्त से सिद्ध करना पड़ता है, यहाँ तो अकेला स्वभाव से ही सब सिद्ध करते हैं। ऐसा ये चौथा बोल है, वो गुणभेद का बोल है, माने कि एक एक गुण को आप देखते रहोगे। पूज्य गुरुदेव श्री ने 271 कलश 270 कलश है, न द्रव्य न खंडियामी, न क्षेत्र न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, सुविद्धो सुविशुद्धो एको द्रव्य मात्र, वो जो कलश है उसमें गुरुदेव ने बताया है कि अपना आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कभी खंडित नहीं होता, और तू पर्याय का भेद तो छोड़, गुण का भेद भी छोड़, द्रव्य क्षेत्र काल का भेद भी छोड़, और तेरा अखंड ग्राहक पर दृष्टि कर। एक एक गुण की एक एक नई से खोज करने जाएगा तो तेरी खोज माने की तारी खोज खोवाई जा से, गुरुदेव शब्द तारी खोज खोवाई जा से। एक एक गुण को एक एक नई से देखने का प्रयत्न करेगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी, इसलिए तू गुण का भेद करके सोच ही मत। अच्छा विचार जरूर आता है गुण भेद का, जब द्रव्य की सन्मुख जीव अपना परिणमन करने के लिए तत्पर होता है तब एकदम उसको द्रव्य दृष्टि में नहीं आता है। पूज्य बेन श्री को प्रश्न पूछा था कि भाई हम माने कि नायक की धुन लगाते हैं, हम रटन उसका ही करते हैं और हमको वही चाहिए, तो वो बोले कि पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, मगर वो श्रोता ने बोला कि भाई ये हमारा उपयोग टिक नहीं सकता है, उसमें थोड़ा टाइम चलता है ना तो फिर हम विकल्प बहुत चलने लगते हैं, बहुत विकल्प चलने लगते, सीधे बाहर आ जाते हैं, और माने कि विचार नहीं किए हो ऐसे विकल्प भी चलने लगते हैं। ऐसा बेसरी को प्रश्न किया, वो स्वानुभूति दर्शन में है, तो ऐसा प्रश्न किया तो बोले हम इसके लिए क्या करें। तो बेसरी ने बोला कि देखो भैया ऐसा है कि एकदम कोई भी जीव होता है ना वो सीधा अपनी श्रद्धा मैं नायक हूँ ऐसे अभेद करके परिणम नहीं सकता है। कोई ऐसा पूर्व की पात्रता वाला जीव हो जिसकी योग्यता पक गई हो जिसका स्वकाल आ गया हो उसकी बात अलग है, ऐसा होता भी है नहीं होता ऐसा भी नहीं है, अपने सामने सोगानी जी का उदाहरण भी है, इसलिए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है, मगर अधिकांश जीव की परिणति ऐसी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ती पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों की परिणति हमेशा इतनी स्पीड से नहीं चलती है, इसलिए उसकी विचारधारा एकदम मैं नायक हूँ उसमें स्थिर और स्थित नहीं हो सकती, इसलिए उसको अगर द्रव्य का विचार ज़्यादा न चले तो उसको गुणभेद से विचार करना चाहिए। गुणभेद से भी विचार ज़्यादा न चले और विकल्प खड़ा हो जाए तो पर्याय से भी विचार करना चाहिए। जो व्यक्त पर्याय है, जो व्यक्त ज्ञान की पर्याय है वो प्रकट रूप पर्याय है, और त्रिकाली द्रव्य है वो अनुभूति नहीं है हुई है उस अपेक्षा से तो अभी अप्रगट है, तो वो प्रगट से अप्रगट में जाने का मार्ग उसको सोच लेना चाहिए कि ये ज्ञान तो प्रगट है, ज्ञान में तो जानना चलता है, ज्ञान में तो राग का भी ज्ञान होता है, ज्ञान में ज्ञायक का भी ज्ञान होता है, तो मेरी ज्ञान की पर्याय तो प्रत्येक समय में उपयोग रूप मेरी अंश की किरण तो प्रगट रूप है, तो वो अंश का किरण कहाँ से आता है, तो कि वो तो द्रव्य में से बह रहा है, मेरा ध्रुव का प्रवाह में से बाहर निकला है, तो कि वही ज्ञान की दोरिये दोरिये तू चला जा तो उधर ही ज्ञायक है, ऐसा भेद ज्ञान की प्रक्रिया उसको करनी चाहिए। एकदम कोई जीव की परिणति में ज्ञायक हूँ ऐसे स्थित न भी हो सके
तो उसका भेद के विचार से, गुण भेद के विचार से, पर्याय भेद के विचार से उसको विचारधारा करके वो प्रकट जो व्यक्त पर्याय है वो पर्याय कहाँ से आती है, उसका प्रवाह कहाँ से आया है, वो प्रवाह कहाँ से चलता चलता आया। अभी पानी आता है तो अपन को ऐसा लगता है नल में से पानी आया, पानी नल में से आता है, कोई कहता है टंकी में से आया, पानी टंकी में से आता है, अरे भैया पानी तो पानी में से ही आता है। तो संयोग को देखने की आदत जीव की अनादि से है कि संयोग से स्वभाव का मापदंड करता रहता है, ये संयोग है ना इसलिए वो आ रहा है, इसलिए वहां से आ रहा है। अरे भैया ये ज्ञान की ज्योत जो है, ज्ञान की किरण है, उसका प्रवाह नायक में से बहता 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 वर्तमान पर्याय तक आया है, और वो वर्तमान पर्याय ये योग की सिद्धि फिर अंदर चली जाती है, फिर दूसरी बार आती है, फिर वो चली जाती है, फिर तीसरी बार आती है। ये फंक्शन अनादि से चल रहा है, उसमें जितना तू भेद से दिखता है इतना तेरे को राग आदि विकल्प होता है, और जब तू उसको अभेद से देख लेता है तो वहां राग आदि विकल्प की जगह निर्विकल्पता खड़ी हो जाती है। इतना सरल है, इस तरीके से भी अनुभूति हो सकती है। ऐसा अनुभूति के लिए बहुत से तरीके हैं, ऐसे एक ही बात से अनुभव नहीं होता, एक ही है परमार्थ का पंथ, दो पंथ नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, मगर कोई श्रद्धा से विचार करे कोई ज्ञान से विचार करे तो दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। कोई ज्ञान से आगे बढ़ता है, कोई श्रद्धा से सीधा मोर छाप मार लेता है, मगर श्रद्धा से सीधा मोर छाप मारता है उसको भी पहले ज्ञान में निर्णय जरूर हुआ होता है। निर्णय के बिना कभी श्रद्धा सम्यक हो ही नहीं सकती, इसलिए इस तरीके से अपने को अपनी सोच चलानी चाहिए। ऐसी सोच जिसकी चलती है उसको अल्प काल में अनुभूति आत्मा को भेटते हुए होती होती न होती ही है। ऐसा सरलतम मार्ग ज्ञानियों ने अपने को बताया है, उस मार्ग से, उस मार्ग पर, उस पथ पर अपन चले और चल के अपनी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें, ऐसी मंगलवार।